हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आधी रात का वक्त था। धृति और माधुरी के बीच आज कुछ खास बात नहीं हुई थी। माधुरी ने कोशिश की पर धृति बात करना ही नहीं चाहती थी, सो अपने कमरे में बंद हो गई। खाना भी नहीं खाया और माधुरी उससे वजह पूछती रह गई, पर धृति की खामोशी नहीं टूटी। माधुरी के लगातार आते कॉल्स और मैसेजेस से इरिटेट होकर धृति ने फ़ोन भी ऑफ कर दिया था और कुछ देर पहले ही उसकी आँख लगी थी, लेकिन किसी के पूरे जोर के साथ बार बार दरवाजे को पीटने से उसकी नींद टूटी। उसने खींचते हुए अपनी आंखें खोली और अपनी उनींदी आंखों को मलते हुए गेट की ओर बढ़ गई। दरवाजे पर माधुरी को देखते ही उसे सब याद आ गया और मन कड़वाहट से भर गया। धृति, अर्णव का एक्सीडेंट हो गया है, माधुरी ने घबराहट भरे स्वर में कहा। चेहरे पर डर के साथ दुख भी झलकने लगा था। वो तो सो रही थी जब कबीर का उसके पास फोन आया। अर्णव के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही वो बदहवास सी धृति के कमरे की ओर दौड़ी थी, पर धृति, जो इस वक्त एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार थी, उसे तो सब साजिश ही नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत के भाव उभर आए और तल्खी डरे लहजे में उसने सवाल किया, तो मैं क्या करूं? धृति, माधुरी को उसका ये अजीब व्यवहार देखकर गहरा झटका लगा। वो हैरत से फटी आंखों से उसे देखने लगी। अर्णव का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? इतनी पत्थर दिल कब से हो गई तुम? क्या तुम्हारे अंदर की इंसानियत भी मर गई है? हाँ, मर गई है। उस इंसान के लिए तो इंसानियत भी मर गई है जिसने मेरी जिंदगी को खेल बनाकर रख दिया है और मुझे अपने हाथों की कठपुतली। धृति ने रोषपूर्ण लहजे में जवाब दिया, जिसे सुनकर माधुरी एक बार फिर चौंक गई। धृति, माधुरी अभी आगे कहने ही वाली थी कि धृति ने उसकी बात काटते हुए आगे कहना शुरू किया, मत करो ये नाटक माधुरी, सब जान गई हूँ मैं कि तुम उनसे मिली हुई हो और ये सब तुम सबकी साजिश है मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए। और कोई पैंतरा तो काम नहीं आया, तो अब एक्सीडेंट का झूठा नाटक रचने लगे हो, पर मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। धृति का ये इल्ज़ाम सुनकर पहले तो माधुरी फटी आंखों से बेयकीनी से उसे तकती रही, फिर कठोर अंदाज में सवाल किया, क्या बकवास है ये धृति, ये सब किसने कहा तुमसे? मैंने खुद अपने कानों से तुम्हें कबीर से बात करते सुना है। मैंने तो इतना विश्वास किया तुम पर तुमने मेरे ही पीठ में छुरा घोंप दिया, मेरी दोस्त बनकर उनकी मदद करती रही। धृति की आवाज़ गमगीन थी और चेहरा दुख अफसोस जैसे भावों से सना था। पहले तो माधुरी उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई, फिर अचानक ही उसके जहन में कुछ आया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। अपनी दोस्ती पर इल्ज़ाम उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और चेहरे पर गुस्से व अफसोस के भाव उभर आए। झूठ है ये, मैंने तुमसे दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाई है, तुम्हारे लिए मैंने अपना परिवार प्यार सब कुछ छोड़ दिया और तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। मैं अर्णव के साथ नहीं मिली थी, कबीर से मेरी 3 सालों में एक बार भी बात नहीं हुई थी। अगर तुम आज ऑफिस आई थी और तुमने मुझे कबीर से बात करते सुनकर ये समझ लिया कि मैं उसके साथ मिली हुई हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज 3 साल बाद सामने से उसका फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन नहीं किया था उसे। मुझे नहीं पता कि कैसे क्या सुना तुमने और कितना, पर मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया है। अर्णव के यहाँ आने, तुमसे मिलने में मेरा कोई हाथ नहीं और ना ही अर्णव का ये एक्सीडेंट कोई नाटक है। कबीर के पास हॉस्पिटल से फ़ोन गया था, उसने मुझे फ़ोन करके बताया और मैं सीधे तुम्हारे पास आई, पर तुम्हें तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं। अर्णव वहाँ ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम्हें सब नाटक लग रहा है। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है तुम्हें धृति, जैसे अर्णव को हुई थी। अर्णव को गलतफहमी हालातों के कारण हुई, पर तुम्हारी ये गलतफहमी तुम्हारी बेवकूफ़ी की निशानी है। छुपकर किसी की आधी अधूरी बात सुनकर तुमने खुद ही कुछ भी सोचकर हम सबको कटघरे में खड़ा कर दिया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। खैर, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा तो मेरे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं रह गया है। तुम्हें सब कुछ नाटक लग रहा है ना, तो रहो यहीं और मानो कि ये नाटक सच हो जाए। मैं जा रही हूँ उसके पास, क्योंकि तुम्हारे तरह मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं। मेरे अंदर की इंसानियत अभी मरी नहीं और तुम्हारे तरह मैं पत्थर दिल नहीं। आखिरी की बात उसने बेहद गुस्से व अफसोस भरे लहजे में कही। इसके बाद माधुरी वहाँ एक पल भी नहीं रुकी, अपने रूम में पर्स लिया और किसी को फ़ोन करते हुए घर से निकल गई। पीछे खड़ी धृति स्तब्ध सी खड़ी उसे हड़बड़ी में जाते देखती रही। उसके कानों में माधुरी और अर्णव की कही बातें गूंज रही थीं। माइंड पहले ही डिस्टर्ब था, शायद इसलिए चिढ़कर ऐसे रिएक्ट कर गई, पर अब सोच सोच कर उसका सर दर्द से फटने लगा था। अर्णव की कही बात उसके जहन में घूम रही थी कि वो अपनी जान दे देगा। माधुरी का कहना कि वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है धृति की धड़कनों को मध्यम कर गया था। अपने गुस्से में क्या कुछ नहीं कहा था उसने, उसे एक एक बात अब उसे याद आ रही थी। वो निढाल सी जमीन पर बैठती चली गई, जैसे अब अपने जिस्म का बोझ उठाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। कहीं अर्णव को सच में कुछ न हो जाए, ये ख्याल मन में आते ही उसकी धड़कनें धीमी पड़ने लगी थी और आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ने लगा। पर इससे पहले कि वो टूटकर बिखरती, उसके जहन में अर्णव का ख्याल आया और वो अपनी सारी हिम्मत बटोरते हुए उठ खड़ी हुई। लड़खड़ाते कदमों के साथ कमरे के अंदर दौड़ी, फ़ोन उठाया तो बंद था। खुद पर ही खींचते हुए उसने फ़ोन ऑन करके हड़बड़ी में माधुरी को फ़ोन लगाया, पर उसका नंबर बिज़ी आ रहा था। लगातार 4-5 बार फ़ोन करने पर भी माधुरी से उसकी बात नहीं हो सकी। वो एक बार फिर फ़ोन लगा ही रही थी कि फ़ोन पर कुछ मिस्ड कॉल्स की नोटिफिकेशन आई। लगातार 6 कॉल्स की नोटिफिकेशन देखकर धृति के दिमाग में कुछ खटका और उसने उस नंबर पर फ़ोन लगा दिया। कुछ देर बाद उसकी बात उस इंस्पेक्टर से हुई जो मौके वारदात पर पहुंचा था, और अर्णव को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसकी कॉल हिस्ट्री में पहला नंबर धृति का देखकर और उस पर वाइफ नाम देखकर उसने धृति को लगातार 5-6 बार फ़ोन किया था, और जब हर बार उसका नंबर ऑफ आया तो दूसरे नंबर पर कबीर को कॉल किया। इंस्पेक्टर ने हादसे के बारे में उसे बताया, अर्णव की कंडीशन और हॉस्पिटल का नाम भी जहाँ वो था। जैसे जैसे वो बता रहा था, धृति की आंखों से आंसुओं की धारा और तेजी से बहती जा रही थी। खुद पर उसे इतना गुस्सा आया कि अभी खुद को ही खत्म कर देती। पहले आकाश की मौत की वजह बन गई और अब अर्णव उसके कारण मौत के दरवाजे पर खड़ा है। धृति ने अपनी टूटती सांसों की डोर को थामा, कैब बुक की और जिस हालत में थी उसी हालत में बदहवास से दौड़ती हुई मेन रोड पर पहुंची। कैब में बैठकर वो सारे वक्त बस अर्णव की सलामती की दुआ मांगती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो अंदर की ओर दौड़ी, पर पत्थर में पैर अड़ने से मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। सर के साथ दोनों कोहनियों में भी चोट लगी, पर उसे अपने दर्द की परवाह नहीं थी। लोग उसकी मदद करते उससे पहले ही उठकर बदहवासी अंदर की ओर दौड़ गई। रिसेप्शनिस्ट से पूछकर वहाँ काम करने वाली नर्स की मदद से ओटी तक पहुँची तो वहाँ माधुरी के साथ मृणाल भी मौजूद था। ओटी की रेड लाइट जल रही थी और बाहर माधुरी परेशान सी सर झुकाए बैठी थी। मृणाल परेशान सा ओटी के बाहर चक्कर काट रहा था। माधुरी पर नज़र पड़ते ही धृति के कदमों की रफ़्तार धीमी पड़ गई। उसके गुस्से में कही बातें याद करते हुए मन शर्मिंदगी व आत्मग्लानि से भर गया। माधुरी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, पर अर्णव की चिंता भी थी, सो हिम्मत करके उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। माधुरी सर झुकाए परेशान सी बैठी थी जब उसके कानों में धृति की धीमी कमज़ोर रूंधी हुई आवाज़ पड़ी, माधुरी।
आवाज़ सुनकर माधुरी ने चौंकते हुए सर उठाया और सामने खड़ी धृति पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे पर गुस्से व रोष के भाव उभर आए। अब क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें तो सब नाटक लग रहा था ना, फिर क्यों आई यहाँ? धृति की आंखें छलक आई, वो सर झुकाए सिसकने लगी। मृणाल अब भी पूरी बात नहीं जानता था, इसलिए माधुरी के इस व्यवहार की वजह नहीं समझ सका, पर कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था उसे। उसने धृति की हालत देखी तो उस पर तरस आने लगा। माधुरी का ये सख्त रवैया उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तुरंत ही उन दोनों के पास चला आया। माधुरी, शांत हो जाओ, तुम्हारे और धृति के बीच जो भी प्रॉब्लम है उसे बाद में सुलझाना। अभी अर्णव पर ध्यान दो, जगह का ख्याल करो, हम हॉस्पिटल में हैं। ऐसे चिल्लाओगी तो बाकी पेशेंट को परेशानी होगी, और धृति की हालत तो देखो। गुस्से से भड़की माधुरी ने अब जाकर धृति पर ध्यान दिया था। सफ़ेद रंग का सादा सा सूट सलवार पहन रखा था उसने, दुपट्टा तक नहीं था गले में, बाल बिखरे थे, चेहरे और कपड़े पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी, माथे से खून रिस रहा था, कोहनी छिली हुई थी, चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और आंखें रोने के कारण लाल होकर सूज गई थीं। हाथ में बस एक फ़ोन पकड़ा हुआ था। बिखरी बिखरी हालत में वो दौड़ती हुई सिर्फ अर्णव के लिए आई थी। माधुरी का गुस्सा कुछ कम जरूर हुआ, पर नाराज़गी जस की तस बनी रही। धृति की बातों और व्यवहार ने उसके मन को बहुत आहत किया था। उसने अपनी दोस्ती के लिए सब छोड़ दिया और धृति ने उस पर विश्वास तक नहीं किया। यही बात उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा रही थी। अपनी नाराज़गी दिखाते हुए माधुरी ने अपना चेहरा फेर लिया। यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर जा सकती हो, वैसे भी ये सब तुम्हारे लिए नाटक ही तो है। जाओ, इत्मीनान से घर जाकर इस नाटक के ख़त्म होने का इंतज़ार करो, शायद जल्दी ही इस नाटक के साथ अर्णव की ज़िंदगी, तुम्हारे लिए उसका प्यार और उससे तुम्हारी नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। माधुरी ने तंजिया अंदाज में कहा और नाराज़गी भरी निगाहों से उसे घूरते हुए दूसरी तरफ चली गई। धृति सर झुकाए सिसकती रही। मृणाल ने हैरत भरी नज़रों से माधुरी को देखा, फिर धृति की ओर निगाहें घुमाते हुए चिंतित स्वर में बोला, धृति, तुम ठीक हो? ये सब कैसे हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? चलो तुम ड्रेसिंग करवा लो, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा।
नहीं, मैं ठीक हूँ। मिस्टर सिंह कैसे हैं?
धृति ने वहाँ से कहीं भी जाने से साफ इनकार कर दिया। उसे तो सिर्फ अर्णव की चिंता खाए जा रही थी। ये तो वही जानती थी कि घर से यहाँ तक का सफ़र उसने किस हाल में तय किया है। किसी को खोना क्या होता है, वो उसने आज महसूस किया था। अर्णव के साथ बिताए सभी पल एक एक कर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे और उसे शिद्दत से अर्णव के साथ की ज्यादती का एहसास हुआ था। तड़प उठी थी वो उसके लिए और एक एक पल सदियों सा बीता था उसके लिए। मृणाल उसकी स्थिति समझ रहा था, इसलिए उसने नरमी से जवाब दिया। उसके सीने में गहराई तक कांच घुस गया है, इसलिए ऑपरेशन हो रहा है, पर तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। मृणाल उसे सांत्वना दे रहा था, पर धृति हकीकत से वाकिफ थी। इंस्पेक्टर ने उसे सब बताया था। अर्णव के सर पर चोट आई थी, वो भी टाइम पर एयरबैग खुल गया, इसलिए कांच उसके चेहरे और सर को जख्मी ना कर सका। पर गाड़ी का कांच शरीर में जगह जगह धस गया था, खून पानी की तरह बहा था और उसकी हालत क्रिटिकल थी। धृति ने पलटकर कुछ नहीं कहा, बस ओटी के बाहर की दीवार से टिककर वहीं फर्श पर बैठ गई। शायद अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और पैरों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि अपने शरीर का बोझ संभाल सके। आंखों से मौन आंसू बह रहे थे और बेचैनी से धड़कती हर धड़कन अर्णव की सलामती की दुआ मांग रही थी। टू बी कंटिन्यूड।